Blessed Savior, Om Namah Sitthevyah, Om Namah Sitthevyah, Om Chotatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Loksauvasahunam, Munisuvaya Desayaram, Paramiya Munisuvayam Jinam Devam, Sankamamanu Ogaminam, Jahasu Amvarnai Samo. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देहुला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धर्मसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 382 पर आ गए हैं। कल जो हमने संयोजन की बात देखी थी, फुटनोट में से भी पढ़ी थी, अनंतानुबंधी के या अंतरंग गति में अनंतानुबंधी की बात वगैरह, तो उसमें ये बंधने के बाद, आवली के बाद जो संक्रमण होता है उसको संयोजन कहा था। अब यहाँ हम एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपणा देख रहे हैं। विषय अपना अनुभाग संक्रमण का चल रहा है और उसमें काल की बात बता रहे हैं, यानी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण का काल, जघन्य अनुभाग संक्रमण का काल। यथा 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय और 9 कषाय, इनके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से भी अंतर्मूर्त मात्र ही है, यानी उसका अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव, ऐसा लिया था ना, बंधावली के बाद अनुभाग का संक्रम करता है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का काल कितना है, वह जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। मिथ्यात्व में जाने के बाद की बात नहीं, हाँ, इनके अनुभाग का संक्रामक, उत्कर्षण, अपकर्षण की बात मुख्यतः होगी ना इसमें। सम्यक मिथ्यात्व भी वो अपकर्षित होता रहता है, अनुभाग का अपकर्षण होना, इतनी बात लेना है। हमने जो प्रकृति संक्रम देखा था, हमने जो प्रकृति संक्रमण में देखा था कि सम्यक्त्व अवस्था में सम्यक्त्व प्रकृति का संक्रमण नहीं होता, प्रकृति संक्रमण में, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का नहीं होता है, और दूसरे तीसरे में दर्शन मोनिय किसी का नहीं होता है, वो प्रकृति संक्रमण में बताए थे। अब यहाँ अनुभाग संक्रमण की बात चल रही है। तो अनुभाग वहां घटता रहेगा तो उसको हम उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण कहेंगे, क्योंकि वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले वहां परमाणु है और वो संक्रमित होते रहेंगे, उसका अपकर्षण होता रहेगा। यह तो स्थितियों की बात नहीं लेनी है ना, स्थिति तो घटती चली जाएगी, परंतु अनुभाग की बात है। उनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। अनुत्कृष्ट का काल यहाँ छोटा लिया है, अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक। बाद में वो उत्कृष्ट कैसे होगा, अनुत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट रूप से इसके लिए कुछ ऊपर है क्या? हाँ, ऊपर की जो साइन है वो देखेंगे हम, नीचे पढ़ते फुटनोट में। ये जो अभी हमने पढ़ा ना, अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक जहन्य और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है। मिच्छत्तस्य उक्कस अनुभाग संकामो, उक्कसाण भाग हुआ है अनुभाग, उक्कसाण भाग अनु करना उसको। मिच्छत्तस्य उक्कसाण भाग संकामो केवचिरम कालादो होदी, यह मिथ्यात्व का लिया है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक कितने काल तक होता है? कहते जहन्न उपकसेन अंतोमुत्तम, जहन्न उपकसेन, जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक जो है वो अंतर्मूर्त काल तक होगा। अणकस्य अनुभाग संकामो, अनुत्कृष्ट की बात चल रही है, उपकस और अणकस्य केव चिरम कालादो हो दी, र के ऊपर बिंदी, केव चिरम कालादो हो दी। अनुत्कृष्ट कितने काल तक होते हैं? जहन्य न अंतोमोत्तम, उक्कस्य न अनंत कालम, असंख्य जा पोगल परियट्ठा, ये असंख्य स के ऊपर बिंदी, ये तो हमने पढ़ा था ऊपर, अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, वो पांच ज्ञानावरण के साथ मिथ्यात्व को लिया था, वो तो हमने पढ़ लिया था। एवं सोलस कषाय नव नौ कषायाणम, सोलह कषाय नव नौ कषायों के बारे में भी यही बात है। सम्मत सम्मा मिच्छत्त मिच्छत्ताणम उक्कस अनुभाग संकामो केवचिरम कालादो होदी जहन्य न अंतोमोत्तम, और उपकस्य न वे छावट्ठी सागरोवमाणी सादिरेयानी। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वही बात बताई, अनुपकस्य अनुभाग संकामो केवचिरम कालादो होदी जहन्य उपकस्य न अंतोमोत्तम। ऊपर नीचे से चौथी पांचवी लाइन में अनुपकस्य हुआ था, वो अनुपकस्य करना वहां भी। हमने जो ऊपर पढ़ा था वही बात यहाँ है, एक्सप्लेनेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें, वही बात रिपीट की है ना उन्होंने। जघन्य उपकस्य ना, जघन्य की बात नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम मिनिमम पॉसिबल काल लगातार कितना होगा तो अंतर्मोद, अधिक से अधिक कितना होगा तो भी अंतर्मोद, अनुत्कृष्ट की बात। ऐसा लेना क्या? नहीं, दोनों के लिए दोनों ऑप्शंस है कि एक क्या है? दोनों की साथ में बात की है ना, क्या सम्यक्त्व के लिए और सम्यक मिथ्यात्व के लिए? जघन्य से और उत्कर्ष से, बरोबर, दोनों के लिए जघन्य अंतर्मूर्त है, दोनों के लिए उत्कृष्ट 266 सागरोपम है। 383 पृष्ठ पर आते हैं, साता वेदनीय यशकीर्ति कौमा उच्च गोत्र तथा मनुष्यगति, मनुष्यगति प्राज्ञानुपूर्वी औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघात, प्रथम सहनन तथा आतप व उद्योत को छोड़कर शेष प्रशस्त नाम प्रकृतियों के भी उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? वह जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि मात्र है। उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक, उसका स्वामित्व देखकर फिर हम यहाँ आते हैं। उत्कृष्ट की बात है ना, जघन्य की बात नहीं है। हमने स्वामित्व जो देखा था, स्वामित्व 377 से शुरू हुआ था, और अभी जो हमने औदारिक आदि की बात देखी है, यहाँ 378 पृष्ठ पर नीचे मनुष्य गति वगैरह वगैरह बातें। तो हमने वहां देखा था कि देव सर्व विशुद्धि देव के द्वारा बांधी गई थी, तो अनुभव ज्यादा बांधा था, और बाद में वो देवों में, नारकियों में, तिरियंचों में, वो सभी की लिस्ट बताई थी। यानी उत्कृष्ट बांधने के बाद वो कहीं भी जाए तो उत्कृष्ट उसकी सत्ता में पड़ा है अनुभाग, तो उसका संक्रमण होगा, तो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण कहलाएगा। साता वेदनिया, उसका तो हमने देखा था अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सायंप्राय क्षपक के द्वारा। वो भी जघन्य से अंतर्मुख, वो तो सिद्ध होता है ना, उत्कृष्ट से कुछ कम पूर्व कोटि में। अभी आउली अतिक्रांत, उसका संक्रमण करने वाले यहां देखना 378 पृष्ठ पर। साता का कौन करता है स्वामित्व, ऊपर से तीसरी, दूसरी लाइन 378 में, ऊपर से दूसरी लाइन। साता वेदिनी के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम किसके होता है, पहले में पहले ये नक्की करना है कि उसका उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा। वृषस प्रकृति है बराबर, जहां मिनिमम कषाय है वहां उत्कृष्ट अनुभाग बांधेगा। तो साता बनती तो है 13वें तक, परंतु अनुभाग तो 10वें तक बंधेगा, योग वहां तक है ना, लेशा वहां तक है, यानी कषाय वहां तक है, लेशा की भी बात नहीं है। तो इसलिए वहां अंतिम समयवर्ती क्षपक लिया है, क्योंकि क्षपक की विशुद्धि ज्यादा है, तो वहां मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग बांधा है। आवली बीत जाने पर उसका संक्रमण करने वाले कौन कौन हो गए, क्षीण कषाय और सहयोगी। अब अर्लीएस्ट पॉसिबल ये कब हो सकता है, पूर्व कोटि के आयु में, हाँ 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त, तो वहां से लेकर उसका 12वां गुणस्थान और फिर 13वें में आ गए, तो उसका जो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण है वो 13वें के अंत समय तक चलेगा, इसलिए कुछ कम पूर्व कोटि कहा सातावेदनी में। यश कीर्ति और उच्च गोत्र भी वो 10वें में बनती है लास्ट में, वहां बंधने की विच्छित्ति है उसकी, तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग तो वहीं पर बंधेगा, तो उसमें भी ये बात बता, ये हो जाएगी। ये मनुष्य गति आदि वहां पर तो नहीं बनती है, तो देव में बांधी थी, तो देव में बांधने वाले की भी वहां चलेगी, इसलिए उसको यहां पर ले गया। और अन्य भी बता दिए कि आतप और उद्योत को छोड़कर जो अन्य जो है उसका भी वो कुछ कम पूर्व कोटि मात्र ले लिया। अब कहते इनके, अभी हम 383 पर आते, फिर इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है। उक्त काल उद्वेल्यमान प्रकृतियों को छोड़कर, उद्वेल्यमान प्रकृति यानी आहारक द्विक, आहारक द्विवक द्विक, वो वेलांटी द को नहीं व को चाहिए, या दोनों को मिलकर चाहिए। आहारक द्विक, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, यहां भी देव द्विक, नारक चतुष्क। ये नारक चतुष्क क्या है, हाँ देवेंद्र भाई याद है आपको, हाँ नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और कौन रह गया? हाँ वैकरेक शरीर और वैकरेक अंगों पर, क्योंकि देव द्विक पहले ले लिए ना, तो देव द्विक चले गए तो वैकरेक द्विक नहीं जा सकता, अभी नारक द्विक बाकी है। हाँ देवगति के साथ अगर लेना है तो वैकरेक षटक भी कह सकते इसको। हाँ नारक चतुष्क उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक, ये द्विक वाले तीन, और वो वैकरेक द्विक भी कह सकते हैं हम इसको। चादुनी आठ, एक नौ ये हो गए, आहारिक द्विक भी आ गए ना। देखो आहारिक द्विक दो, सम्यक मिथ्या तो सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो दो चार, दो छः, छः चार दस और तीन तेरह होती है उद्वेलना योग्य प्रकृतियाँ, इनकी उद्वेलना होती है। उद्वेलन है वो तो बंदी थी, वो तो प्रशस्त प्रकृतियाँ है। अभी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ दो, उसको वो प्रशस्त नहीं है, फिर भी वो मिथ्यात्व में जाने पर उल्टा उसका संक्रमण होता है, उसको उद्वेलना कहते हैं। इनको छोड़कर ये को नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उद्वेल्यमान प्रकृतियों को लिखा ना ऊपर, छोड़कर शेष प्रकृतियों का अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है। क्या किसकी बात चल रही है? काल, कौन से काल की? अनुत्कृष्ट के काल की। कितनी हो सकती है? उद्वेल्यमान में तो वो तो रुक जाती है ना, उद्वेल्यमान होगी तो अभी उसमें संक्रमण होने का सवाल नहीं है, वो नष्ट हो चुकी। परंतु जो उद्वेल्यमान नहीं है उसमें कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? अनादि अनंत या अनादि शांत। उद्वेल्यमान प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? तो वो जघन्य से पल्योपम के असंख्यात विभाग तथा अथवा साधिक आठ वर्ष मात्र है। साधिक आठ पहले भी आया था ना, उद्वेल्यमान प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक, उत्कर्ष से जो जिसके प्रकृति सत्व का काल है उतना काल उनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का है। प्रकृति का सत्व कितने काल तक है? साधिक आठ वर्ष में ऐसा ले सकते हम उसको कि क्षपक प्लस नहीं, अथवा अथवा लिखा ना, और ऐड नहीं अथवा दूसरा ऑप्शन बताएं। साधिक आठ वर्ष मात्र लिखा, मेरे ख्याल से जहां उसका क्षय होता है उसकी अपेक्षा से साधिक आठ वर्ष लिया होगा ऐसा लगता है ना। शपक श्रेणी चढ़ा तो उसका तो क्षय हो जाएगा उन प्रकृतियों का, उस अपेक्षा से होना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। उद्वेल्यमान प्रकृति है, प्रकृति पूर्ण उद्वेलना होने के लिए इतना नष्ट इतना काल तो लग गया मिथ्यात्व में जाने के बाद। अब मिथ्यात्व में नहीं गया है और बिना उद्वेलना के वो नष्ट हो जाएगी ना, क्षय तो हो जाएगा उसका। उस अपेक्षा से ले सकते हैं कि एक के आठ वर्ष की बात क्यों लिखी है? उद्वेलना मिथ्यात्व में जाने के बाद भी होगी, जैसे आहारक द्विक वगैरह केंद्रीय जाने की जरूरत नहीं, नारक में भी गया है मिथ्यात्व में गया है, उसकी उद्वेलना होगी। अब नरक गति देवगति वो तो एकेंद्रियो में नीचे के उसमें चले जाते तब उसकी उद्वेलना हो जाएगी। मनुष्य गति की उद्वेलना वो तो वायु का एक अग्नि का एक वो करेंगे। देखो यानी प्रकृति सत्व कितने काल तक है उस वहां तक उसकी अनुत्कृष्ट है, ये इतनी बात ले लेनी। आयु कर्मों की जिस स्थिति को बांधने वाला जिस अनुभाग की रचना करता है वह जब तक उस स्थिति का अपवर्तन नहीं करता है तब तक उतने मात्र काल उसके वह अनुभाग होता है। इस बीज पद के अनुसार, पहले बीज पद ने नियम क्या बताया? किसी ने आयु कर्म की विशिष्ट स्थिति बांधी और विशिष्ट अनुभाग की वहां रचना हुई। और जब तक उसके स्थिति का अपवर्तन नहीं होता है, तो यानी स्थितियों का अपवर्तन यानी परमाणु नीचे के निषेकों में आना, तब तक उसका अनुभाग भी उतना ही रहता है। यानी स्थिति के घटने के साथ वहां अनुभाग का भी संक्रमण होगा। तो इस बीज पद के अनुसार देवायु और नारकायु के उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है। साधिक क्यों लिया? क्योंकि वो बंधने के काल से ही उसका हो जाता है। वह हमने देखा बंध के बंधक काल में उत्कर्षण भी होता है और बंधने के बाद भी उसका अपकर्षण आदि होता रहता है। तो जहां स्थितियों का अपकर्षण हुआ वहां अनुभाग का भी हुआ। मनुष्यायु और तिर्यगायु के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? वह जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्योपम मात्र है। विशेष इतना है कि तिर्यंचायु के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है, यानी लगातार उसी में रहता है उसकी बात है। कंटिन्यूअसली मेरा प्रश्न है, आयु के अंतिम आवलि में तो संक्रमण रुकता है, तो यहाँ कैसे समझना? हाँ चलता रहेगी ना, पर बीच में गैप पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी आयु के अंत में आवली काल पहले उदीर्णा जो कुछ है वो रुक जाती है, तो उतनी गैप पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी तो क्यों नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो ये ऐसा क्यों लिखा है? हाँ देखो, नई आयु बांधी है उसने, तिर्यंच ने तिर्यंच आयु बांधी है, तो इस आयु का भले रुक गया है परंतु नेक्स्ट आयु का तो ये अपकर्षण चालूता रहता है ना। हमने देखा था आयु बंधने के बाद भी उसका कंटिन्यूअस अपकर्षण चलता ही रहता है। तो यानी वो तिर्यंच ने तिर्यंच आयु ही बांधी है, तो उसके लगातार असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित हो गए। अप्रशस्त नाम प्रकृतियों, नीच गोत्र और 5 अंतराय के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष अंतर्मूर्त मात्र है। हमने ज्ञानावरण में भी ऐसा ही देखा था, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, ये इसमें भी लिया वैसा। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का काल कितना है? वह जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। मनुष्यगति प्रायज्ञानुपूर्वी, औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघात, प्रथम सहनन, आतप और उद्योत के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? ये पहले बात आई थी ना? आतप उद्योत को छोड़कर आया था? ओ यानी सभी को छोड़ना? आतप उद्योग को छोड़कर शेष प्रकृतियां ली थी, परंतु इन प्रकृतियों को तो लिया ही था ना। वह जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। आतप उद्योग को लिया था? अच्छा, वहां पर छोड़ा था, यहाँ पर लिया है। यानी वहां पर अकेला आतप उद्योग को नहीं छोड़ा था, सभी को छोड़ा था। जघन्य से अंतर्मुख तो उत्कर्ष से पूर्व कोटि लिया था, और यहाँ जघन्य से अंतर्मुख उत्कर्ष से साधिक दो छियासठ सागरूपम। यानी यहाँ जो हमने जो लिस्ट पढ़ी थी वो सबको छोड़कर ऐसा लेना, क्या खाली आतप और उद्योग को छोड़ा था? नहीं, सभी नाम कर्मों को छोड़ा था, क्योंकि नहीं तो इसको फिर दोबारा लेने की क्या जरूरत थी। यानी वहां पर अपना मेरा तो कंफ्यूजन हुआ था। देखो 383 पृष्ठ पर जो हमने देखा था, सभी को छोड़कर ऐसा बात हुई ना, यानी मनुष्य गति से लेकर, नहीं सातावेदनी को पकड़ो, परंतु नाम कर्मों की बात कहाँ से लिए? मनुष्य गति से लेकर उद्योग तक छोड़कर शेष प्रशस्त नाम प्रकृतियां, यानी वहां प्रशस्त नाम प्रकृतियां लिया, यानी सातावेदनी लिया, यश कीर्ति लिया, उच्च गोत्र, और इतने को छोड़कर अन्य प्रशस्त नाम प्रकृतियां। देखो उसमें ऐसा लेना, एक सातावेदनीय, एक यश कीर्ति, एक उच्च गोत्र और शेष प्रशस्त नाम प्रकृतियां, इनके बारे में वो विधान था। हाँ नहीं, वो तो ये ऐसे हम सभी नाम प्रकृतियों को टोटल चार में गिने, तो चार चार उन्होंने किए, सातावेदनीय, उच्च गोत्र, यश कीर्ति और ये शेष प्रकृतियां, शेष नाम कर्म की प्रकृतियां, इनको छोड़कर कौन से? मनुष्य गति, प्रायोगिनी प्रिय, अवधारिक, अवधारिक अंगोपांग वगैरह वगैरह, पहला सहनन तथा आतप और उद्योत। हाँ छोड़कर बाकी शेष सबको क्यों छोड़ेंगे? वो थोड़ी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। छोड़कर शेष प्रशस्त प्रकृतियों के, यानी सातावेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक कितना है? जघन्य अंतर्मूर्त उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि, यश कीर्ति का भी वैसा ही, उच्च गोत्र का भी वैसा ही, और इन प्रकृतियों को छोड़कर अन्य नाम कर्मों का भी उतना ही, ऐसा लेना। इसलिए अभी ये जो छोड़े थे ना उसको यहां लिए, अभी 384 पर। तो वहां हमने चार लाइन पढ़ी कि कितना है उसका उत्कृष्ट अनुभव का संक्रामक का काल, संक्रामक हुआ, संक्रामक का काल, तो वो भी हमने पांचवी लाइन में पढ़ा, जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक दो छासर सागरोपम मात्र है। हाँ क्योंकि वहां जो छोड़ा था तो अन्य वो क्षपक की अपेक्षा से उसको लिया था, क्षपक की अपेक्षा कुछ उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि लिया था, और यहाँ पर जो लिया है देवगति आदि, देव ने जो मनुष्य गति आदि बांधी थी सम्यक दृष्टि ने, सम्यक दृष्टि ने बांधी थी ना, सम्यक दृष्टि देव है, इसी को बांधेगा इन प्रकृतियों का, और वो उसका जो सम्यक तो चलता रहेगा वेदक सम्यक तो इसलिए साधिक दो छियासठ सागरोपम लिया इन्हीं के। हाँ क्या कहते? हाँ उद्योत में हमने वहां लिया था, उसका स्वामी उद्योत का कौन है उसको हमने नरक गति में लिया था, आपको देखना है स्वामित्व में, देखो चलो 379 पर सेकंड लाइन, उद्योत नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसके होता है? सातवीं पृथ्वी में दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव के द्वारा अधप प्रवृत्त करण के अंतिम समय में जो अनुभाग बांधा गया है, बंद करने वाला उत्कृष्ट वाला कौन है उसको लिया, तिर्यंच गति के साथ उसने उद्योत को भी उत्कृष्ट बंद किया, बंधावली के पश्चात उसका संक्रम करने वाले के। उद्योत का उत्कृष्ट अनुवाक संक्रम होता है और वहां से वो कहीं पर जाता है तो वहां उसका हो सकता है। अभी हम मूल पृष्ठ पर आते हैं 384 पर, जहां हमने 266 पढ़ा था ना उसके आगे। इन्हीं के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? वह जघन्य से अंतर्मूर्त मात्र है। उत्कर्ष से वह आतप नाम कर्म का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, सपरिवार मनुष्यगति नाम कर्म का मनुष्यगति नाम कर्म का परिवार कौन सा है? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, संघात, बंधन, ये सहनन जो कुछ है वो उसका परिवार है। हाँ, औदारिक शरीर अंगोपांग लिए ना ऊपर, बंधन संघात सभी है। मनुष्य गति में वो भी है ना, वो बंधे हुए है ना, अनुभाग अंदर उसका जो घटेगा, बांधी है ना वो शरीर और अंगोपांग का उदय है कि नहीं, उसकी बात कहाँ चल रही है। यह सत्ता में पड़े पड़े उसका जो अनुभाग का घटना होता है, जो कुछ होता है। तो सपरिवार मनुष्य गति नाम कर्म का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तथा सपरिवार औदारिक शरीर प्रथम सहनन और उद्योत नाम कर्म का। अच्छा, यहाँ सपरिवार मनुष्य गति में मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्व लिया और औदारिक को अलग निका। उनका अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित व सादि सपर्यवसित भी है, क्योंकि भले एक इंद्रियों में जाएगा वहां बांधेगा तो सही ना, फिर दोबारा उनमें जो सादि सपर्यवसित काल है उसका प्रमाण जघन्य से अंतर्मूर्त व उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। अनादि अनंत लिया ना, अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादि शांत भी है। अनुत्कृष्ट की बात चल रही है ना। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का काल समाप्त हुआ। अब जघन्य की बात करेंगे। उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट भी बता दिया उन्होंने, अब जघन्य अनुभाग के संक्रमण काल की प्ररूपना। 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 5 अंतराय के जघन्य अनुभाग के संक्रम का काल कितना है? वह जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। हमने देखा था ना, वो मिनिमम पॉसिबल अनुभाग है। जैसे वहां स्थिति की उदीर्णा रुक जाती है, वैसे अनुभाग का संक्रमण भी रुकता है। उसके दसवां क्यों लिया, 12वें के अंत में। उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? 6 दर्शनावरण में हमने कोई विशेषता देखी थी, उसकी ज स्थिति में वेरिएशन था ना, वो 2 अवली पहले रुक जाता था, उसको देखा था हमने निद्रा प्रचला के बारे में। अब अजघन्य अनुभाग का संक्रामक का काल कितना है? वह अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है। जो जघन्य नहीं उसको हम अजघन्य कहेंगे। निद्रा निद्रा यानी जब तक जघन्य नहीं होता है तब तक अजघन्य कहेंगे ना उसको, तो अनादि अनंत वो अजघन्य है, क्योंकि वो तो क्षपक श्रेणी पर चढ़ेगा नहीं, तो उसका अनादि अनंत होगा। और जिस समय जघन्य, वो अंतिम समय में जघन्य हुआ तो उसका शांत हुआ वो। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, सातावेदनीय असातावेदनीय, मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। जघन्य अनुभाग का संक्रम। जहां उसका क्षय होता है उसका अंतिम अंतर्मुहूर्त लिया होगा जो अनुभाग कांड का काल है। क्या लगता है? हाँ, मगर वो अंत में जो अनुभाग कांडक होता है और सर्व स्वामित्व में तो हमने अंतिम समय लिया था उसका। देखो स्वामित्व में जघन्य स्वामित्व अभी देखना है 379 के आगे उत्कृष्ट के आगे जघन्य ना। थ्री सेवेंटी नाइन से शुरू हुआ था 380 पर है वो। मिथ्यात्व वगैरह ये हत समुत्पत्ति वाले लिए थे वहां पर। मिथ्यात्व और आठ कषायों का हत समुत्पत्ति करने वाले सूक्ष्म एक इंद्रियों को लिया था और सम्यक मिथ्यात्व का वो क्षपक लिया था। अच्छा, अलग अलग पोजीशन पर है उसकी, यानी स्वामी अलग अलग है। हाँ, देखो हमने लिस्ट कौन सी पढ़ी, निद्रा प्रचला स्त्यान वृद्धि। वो निद्रा की बात कहाँ, यहीं पर ली थी ना, अभी पहले ही लाइन में थी 380 पर। वो कौन होता है? तो उसने हत समुत्पत्ति कर्म को किया वाला जीव लिया। यानी हत समुत्पत्ति करने के बाद वो भले द्विंद्रियादि में जाए तो वहां भी उसका चलेगा वो जघन्य अनुभाग संक्रमण। तो वो अंतर्मुहूर्त बताया और हाँ साता की भी बात वही सी आई थी ना, उसे में लिया था साता को भी, साता असाता अनादि सत्कर्मिक नाम कर्म नीच गोत्र वगैरह वगैरह। यानी हत समुत्पत्ति हुआ, यानी उसने स्थिति भी घटाई और अनुभाग भी घटाया है। अभी उसका अनुभाग सत्ता में जघन्य है, उसमें जो कुछ नया बंध होगा उसकी अपेक्षा से वहां अंतर्मुहूर्त तक होगा। अभी यहाँ आते हैं 384 पर, नीचे से तीसरी लाइन। उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। सम्यक्त्व चार संज्वलन और पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? वह जघन्य और उत्कर्ष से एक समय मात्र है, क्योंकि ये कब हमने देखा था? क्षपक के लिए देखा, यानी सम्य जैसे मिथ्यात्व का क्षय करने वाले के सम्यक प्रकृति का जो अंतिम समय है वह अनुभाग संक्रम का एक समय वाला। चार संज्वलन में भी ऐसा ही, अपना अपना जो अलग अलग स्वामी होगा उसका, क्रोध का अलग पोजीशन पर, मान का, माया का और लोभ का, परंतु उसका समय तो एक घटित होगा। वैसे पुरुष वेद का भी, पुरुष आठ कषाएं कहां लिया आपने? मिथ्यात्व के साथ जघन्य अनुभाग संक्रम की बात की थी वहां। हाँ, अजघन्य में असंख्यात लोक मात्र, तो अजघन्य रूप से वो एक इंद्रिय आदि में असंख्यात लोक मात्र काल रहेगा। वैसा नहीं लिया वो आप उदय की बात कर रहे हैं। हमें तो कोई भी क्यों ना उदय में हो, अन्य का संक्रमण होता रहता है। कल भी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात निकली थी ना, उत्कृष्ट स्पर्धक सबके समान होते हैं और जघन्य स्पर्धक क्या सबके समान होते हैं? तो तब नहीं, बाद में रात में वो वही चलता रहा मेरे दिल में। तो अनंत अनुबंधी का जघन्य कब होगा? उदय की बात ही नहीं, उदय हुए बिना ही वहां अनुभाग का संक्रमण हो रहा है ना। जब अनंतानुबंधी का भी संयोजन होता है तब उसका जघन्य अनुभाग, तब उसके जघन्य अनुभाग कहलाएगा उसका स्वामी। हाँ, हत समुत्पत्ति वाले को बताया। क्षय होना इन्हें संक्रमण होकर ही क्षय होगा ना उसका भी, परंतु उससे भी ये सूक्ष्म एक इंद्रियों में लिया, उसका बंधे छोटा वाला लिया। जिस समय पर क्षय होता है ना उसकी अभी स्थिति इतनी कम नहीं है एक इंद्रिय जितनी, क्षय नवे में होता है तो उस पोजीशन में उसकी स्थिति ज्यादा है। तो स्थिति की अपेक्षा अनुभाग भी उतना ज्यादा है। इसका 8 कषायों का लिया था, अनुत्कृष्ट 16 कषाय लिए थे, और अनुत्कृष्ट के लिए उन्होंने बताया था कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, और अजघन्य के लिए असंख्यात लोक लिए थे। इस संजोलन की बात पढ़ी हमने, एक समय मात्रा, यहाँ पर 350 से परागे 4 संजोलन, ये जघन्य की बात बताई उन्होंने पहले, 4 संजोलन और पुरुष वेद के अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल अनादि अपर्यवसित अनादि सपर्यवसित और सादी सपर्यवसित भी है। उनमें जो सादी स परिवर्तित स करना उसको, उनमें जो सादी स परिवर्तित किया है उसका प्रमाण जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। सम्यक्त्व के अजघन्य अनुभाग के संक्रमक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से सादिक 266 सागरोपम मात्र है। उसको अनुत्कृष्ट में किसको लिया था? नहीं नहीं सम्यक तो प्रकृति में देखना, वहां भी सादिक 266, तो जो अनुत्कृष्ट है उसको अजगण्य भी कह सकते, परंतु उत्कृष्ट की तरफ वाला लिया है इतनी बात। उसमें भी वो ये तो क्षपित कर्मांशिक वगैरह उसकी अपेक्षा से या अनुभाग के, इसमें द्विस्थानिक कहाँ लिया है? अनुभाग तो इसमें तो ज्यादा होता ही नहीं है ना, सम्यक प्रकृति में तो द्विस्थानिक ही होते हैं उसमें तो। अनंतानुबंधी कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 4 समय मात्र है। चार समय कैसे लिया? देखो उसका स्वामी देखो, 380 पर हमने देखा था ना, मिथ्यात्व 8 कषाय अलग लिए थे, पुरुष वेद संज्वलन अलग लिया था, अनंतानुबंधी कहाँ लिया है? थ्री एट्टी पर। हाँ तो विसंयोजना करके अभी 382 पर आना, जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय वर्तमान है। वह उनके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। मेरे ख्याल से वो मिथ्यात्व में जाने के बाद फिर बंध करता है उसकी बात की थी, और आवली काल बीत जाता है तब उसका संक्रामक कहलाएगा वहां पर। किसकी अपेक्षा? योग की, समान अनुभव बंधा हुआ। अच्छा, बराबर है, पॉसिबिलिटी वही ज्यादा है, लगातार वैसा कि वैसा ही योग होना चाहिए। हमने ना काल योग मध्य वगैरह देखे थे ना, उसकी अपेक्षा से होना चाहिए। अब फिर आते हैं अनंतानुबंधी परिणाम, इन्हें अवस्थित योग रहने का काल, लगातार वैसा ही योग रहने का काल, मैक्सिमम योग। हाँ, योग से तो प्रदेशों का ही होता है। जघन्य अनुभाग का संक्रामक, एक्चुअली हमने तो देखा था ना, जघन्य अनुभाग उसका जब बुद्वेल ना करता है तब होता है ना। जघन्य अनुभाग का स्वामी, संक्रामक का स्वामी यहाँ पर है वो। विसंयोजना करके जो जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय वर्तमान है, उसका अर्थ हमें वहां भी नहीं समझना। जघन्य पर संयोजन नर गति में लिया उन्होंने, उसमें लिया था, फिर नरक गति नाम कर्म का जघन्य अनुभव का संक्रामक कौन होता है? तो सर्वप्रथम संयोजन करने वाला जीव। सर्वप्रथम संयोजन में वो बंधावली के बाद वाला लिया था, नीचे उसका हमने अर्थ भी देखा था। ये तीसरी लाइन में बताया था उन्होंने, जघन्य अनुभागम संक्रमयति, यानी तीसरी लाइन में क्या बताया, ये पहले उन्होंने वो सारी लिस्ट बताई, उसका जघन्य अनुभागम बदवा, जघन्य अनुभाग बंद कर, प्रथम आवली का जो बंधावली है, लक्षा बंधावली जो है वो जाने के बाद, बंधावली के बाद वाला उसका ऐसा अर्थ होता है, वहां जघन्य अनुभाग का संक्रमण होता है। परंतु यहां जघन्य परिणाम जो बताया, विसंयोजन करने के बाद जघन्य परिणाम जो बताया, जो कुछ है आओ यहां पढ़ते हैं 385 में। उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल अनादि और पर्यवसित, अनादि पर्यवसित सपर्यवसित चाहिए ना, स शब्द चाहिए ना वहां पर, अनादि सपर्यवसित और सादि सपर्यवसित भी है। उसमें जो सादि सपर्यवसित है उसका प्रमाण जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। और जघन्य की बात की उन्होंने, पुरुष वेद को छोड़कर शेष 8 नौकषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित और सादि सपर्यवसित भी है। उनमें जो सादि सपर्यवसित है उसका प्रमाण जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है, वह जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। उसके अजगन्य अनुभाग के संक्रामक का काल, जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 2-66 सागरों को मात्र है। आयु कर्मों के जगन्य अनुभाग के संक्रामक का काल, जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से 4 समय मात्र है। उनके अजगन्य अनुभाग के संक्रामक का काल, जगन्य से अंतर्मूर्त मात्र है। शंका। देवायु और नारकायु के अजगन्य अनुभाग के संक्रम का काल अंतर्मूर्त कैसे है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अजगन्य अनुभाग संक्रम को आदि करके फिर अजगन्य अनुभाग संक्रम में अंतर्मूर्त रहकर पुनः जगन्य अनुभाग को छोड़कर शेष अनुभाग का घात करके एक समय में जगन्य अनुभाग का संक्रम करके द्वितीयादि समयों में आवलिकातीत पूर्वबद्ध अनुभाग का संक्रम करने वाले के उक्त काल पाया जाता है। आवलिकातीत ने आवलिका अतीत, आवली जाने के पश्चात, आवली बीत जाने पर, यानी बंधक के काल की बात चल रही है ना, क्या कहते हैं? पहले अजगन्य अनुभाग संक्रम को किया, यानी लगातार अंतर्मूर्त में रहा, और फिर जगन्य अनुभाग को छोड़कर बाकी का घात किया, और फिर एक समय में जगन्य अनुभाग का संक्रम करके, यानी अनुभाग का संक्रम किया ने वो जगन्य अनुभाग वो बढ़ाया, और फिर द्वितीयादि समयों में आवलिकातीत पूर्वबद्ध अनुभाग का संक्रम करने वाले के उक्त काल पाया जाता है, यानी वो अंतर्मूर्त पाया जाता है। इसी बात यहाँ बताई। पहले अजगन्य में से अजगन्य का घात करके जगन्य किया, फिर जगन्य का वो तो घात का है, वहां तो उसका उत्कर्षण किया। संक्रम की बात है, हम अकेला अपकर्षण की सोचते हैं। हाँ, चार समय नहीं घटती, समझ में नहीं आया। जगन्य अनुभाग के संक्रमक का काल जगन्य से एक समय, हाँ, यानी वो तो जगन्य का संक्रमक कभी कहलाएगा, उसका उत्कर्षण होता है तभी कहेंगे ना। जगन्य में से अजगन्य हुआ वो तो लगातार 4 समय ही होगा, ये इसका अर्थ होता है। वहां भी ऐसा लेना था। चार समय की बात पहले 15वें पुस्तक में कहीं आए थे, ये रेफरेंस, 4 समय उन्होंने घटित किए थे, आपको याद है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। उक्त काल 386 पर, ये समाधान का सेकंड पैराग्राफ। उक्त काल उत्कर्ष से, यानी अजगन्य अनुभाग का जगन्य से अंतर्मूर्त सिद्ध हुआ, अभी उत्कर्ष से देवायु और नारकायु का साधित 33 सागरोपम तथा तिर्यक आयु का असंख्यात लोक मात्र है। ये हमने देखा था पहले भी। अनुद्वेल्यमान, यानी जिसकी उद्वेलना नहीं होती है, अनुद्वेल्यमान शुभ और अशुभ नाम प्रकृतियों के जगन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? वह जगन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। उनके अजगन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है? वह जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। इसी प्रकार निज गोत्र के भी अनुभाग संक्रम काल का कथन करना चाहिए। आहार शरीर, आहार शरीर अंगोपांग, आहार बंधन, कॉमा लगाना बीच में, और आहार संघात के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है, वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से चार समय मात्र है। इनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है, वह जघन्य से अंतर मुहूर्त मुंह बराबर करना और उत्कर्ष से पल्ल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र है, क्योंकि पल्ल्योपम के असंख्यातवें भाग में वो उसकी उद्वेलना पूर्ण हो जाती है। इसलिए तीर्थंकर, तीर्थकर हुआ तीर्थंकर नाम कर्म के जघन्य अनुभाग के संक्रमण का काल कितना है, वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से चार समय मात्र है। उसके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है, जितना काल प्रकृति सत्कर्म का है उतना ही काल उसके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का भी है। शेष उद्वेल्यमान नाम प्रकृतियों और उच्च गोत्र के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है, वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से चार समय मात्र है। उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कितना है, वह जघन्य से पल्ल्योपम के असंख्यातवें भाग उद्वेल्यमान लिए ना प्रकृतियां और साधिक आठ वर्ष तथा उत्कर्ष से अपने अपने प्रकृति सत्व के काल के समान है। जहां तक उसका प्रकृति का सत्व रहता है उतना। इस प्रकार जघन्य व उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का काल समाप्त हुआ। एक जीव की अपेक्षा अंतर की प्ररूपणा की जाती है। अभी काल के विरुद्ध वो अंतर देखना, यथा पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नौ कषाय, नारकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु, अप्रशस्त नाम प्रकृतियों, नीच गोत्र और पांच अंतराय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का अंतरकाल कितना है, वह जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। कौन सी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमक का काल? उत्कृष्ट अनुभाग बिना अन्य अनुभाग बांधा, अंतर की बात चल रही। अरविंद भाई को आपका प्रश्न ख्याल में आया। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का अंतर काल है, जब वो नहीं कर रहा है, इसी बात है। साता वेदनीय, यश कीर्ति और उच्च गोत्र का तथा जिन नाम प्रकृतियों का क्षपक के द्वारा परभविक नाम कर्मों के बंधाद्योसान के अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बांधा जाता है, उनके भी उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का अंतर नहीं होता। हमने देखा है क्षपक में जिस पॉइंट पर उनका उत्कृष्ट अनुभाग वहां बंद होता है, और बाद में उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण कब होगा, बारहवें में और तेरहवें में होता है, तो उसमें तो अंतर पड़ने का सवाल नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग वाली आयु नहीं बांधी उसने। हाँ, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक लिया ना, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल जघन्य प्रकृति अंतर के समान तथा उत्कृष्ट उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। उपार्ध उपार्ध पुद्गल परिवर्तन तक यानी एक बार मिथ्यात्व में गया है और वो प्रकृति ही नहीं है उसकी, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन तक तो संक्रमण का कोई सवाल ही नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का जघन्य, जघन्य में जघन्य अंतर काल कितना होता है? तो जब तक उसके प्रकृति में अंतर पड़ता है, मिनिमम पॉसिबल अंतर कब पड़ेगा कि वो प्रकृति नष्ट हुई और फिर दोबारा उसने सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो प्राप्त किया तो उसका वो सत्ता में आ गई प्रकृति। बांधने का सवाल कहाँ है वहां पर? देखो देखो, जब प्रकृति नष्ट हो गई तब उसका अंतर चालू हो गया, उद्वेलना हो रही थी तब तक तो उसका संक्रमण हो रहा था, वहां उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक नहीं कहलाएगा, है ना? सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक का जघन्य अंतर काल जघन्य प्रकृति अंतर के समान, प्रकृति अंतर निकालो, ये 343 में 44 पर आना चाहिए, नहीं वहां तो नाना जीव लिए। हाँ, ये नीचे से 343 में नीचे से पांचवी लाइन, सम्यक और मिथ्यात्व का वह अंतर काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। वही उन्होंने जो लिया है, जघन्य प्रकृति अंतर के समान यानी अंतर्मूर्त 343 में। हाँ, अनुभाग का संक्रमण तो वहां चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, सम्यक्त्व का संक्रमण रुक गया वहां पर, क्योंकि स्थिति का या प्रकृति का संक्रमण रुक जाता है, परंतु वहां स्थिति अनुभाग का संक्रमण की बात चल रही है ना। वही मुझे लगता था, अन्य गुण स्थान में उसका अनुभव का संक्रमण रुक जाता है क्या वहां पर? प्रकृति का संक्रमण तो हमने देखा था वो रुक जाता है अन्य गुण स्थान में, तीसरे में जाता है तब तो अनुभाग का हो तो वहां संक्रमण रुक जाता है, ऐसा भी कहना है? तो तीसरा गुणस्थान ले सकते बीच में, ठीक है। उक्त अंतरकाल लेने उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक का काल अंतर, उक्त अंतरकाल देवायु का जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। अंतर की बात चल रही है, यानी अंतर्मूर्त में फिर दोबारा उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण होगा उसका। मनुष्य गति प्रायज्ञानों पूर्वी वज्रषभ सहनन उद्योत और औदारिक चतुष्क का उक्त अंतरकाल देवायु के समान है, यानी अंतर्मूर्त और पुद्गल परिवर्तन उपार्ध। आतप नाम कर्म के इस अंतरकाल की प्ररूपणा अप्रशस्त नाम प्रकृतियों के समान है, ऊपर हमने देखा था चौथी लाइन में जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कर्ष असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर समाप्त हुआ, उत्कृष्ट अंतर है ने, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का अंतर। क्योंकि हमने जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर देखे ना, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का अंतर। अब जघन्य अनुभाग संक्रामक जो है उसमें अंतर कहेंगे तो ज्ञानावरण के जघन्य संक्रामक में अंतर पड़ेगा कि नहीं होगा? हाँ, तो जो जो हमने देखा था शपक होते हैं या जो कोई, वहां पर अंतर नहीं होगा तो पढ़ेंगे उसको। पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, चार संज्वलन, नौ नौ कषाय और पांच अंतराय, इनके जघन्य अनुभाग संक्रामक का अंतरकाल संभव नहीं है। ये क्यों नहीं है समझ में आया? इसको शपक में लिया, मिथ्यात्व को यहां नहीं लिया है क्योंकि उसका जघन्य अनुभाग संक्रामक वो मिथ्यात्व का क्षय करने वाला नहीं था। कौन लिया था वहां? हत समुत्पत्ति के लिया था, सूक्ष्म एकेंद्रियों में जिसने घात किया है और बाद में वो कहीं भी जाएगा तो उसका वो जघन्य अनुभाग संक्रामक होता है। अब यहाँ कहते निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि न रह गया। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, आठ कषाय और तिर्यंच आयु तथा अनुद्वेल्यमान प्रशस्त व अप्रशस्त नाम प्रकृतियों एवं नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात लोकमात्र है। दोबारा उतना जघन्य नहीं होगा उसका, तो असंख्यात लोकमात्र हो गया। देखो देखो जघन्य कहाँ करता है, हमने देखा था सूक्ष्म एकेंद्रियों में, बराबर? तो सूक्ष्म एकेंद्रियों में करता है तो बादर एकेंद्रियों में रहने का लगातार कितना काल है? वो असंख्यात लोक है, वो यहां अंतर में लिया। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते हैं तब तो दोनों को लेते हैं एक साथ, एकेंद्रियों में इन जनरल बात करते हैं। जब अकेला असंख्यात लोक लिखते हैं तो ये बादरों का काल लिखते हैं। यानी उतना जघन्य उसका नहीं होता है जितना सूक्ष्म में होता है। अनंतानुबंधी कषायों के, योग के ऊपर बिंदी लगाना भाई, जघन्य अनुभाग संक्रामक का, ये अनुभाग के बाद कौमा नहीं चाहिए, जघन्य अनुभाग संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। ये हमने देखा है विसंयोजना करने वाला लिया है तो विसंयोजना करने के बाद फिर मिथ्यात्व में गया, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वहां रहा, फिर दोबारा वो अंतर्मूर्त में भी कर सकता है। अंतर्मूर्त में वो गया, मिथ्यात्व में गया, एक अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि हुआ, फिर वो विसंयोजना की जो कुछ है। नारकायु, देवायु और मनुष्यायु के जघन्य अनुभाग संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त, ये मुंह बराबर करना, और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। जब जघन्य से अंतर्मूर्त हमने अभी देखा था, वो आयु बंधने के काल में उसका जघन्य अनुभाग का बंध वगैरह करता है, उसमें अंतर होकर फिर जघन्य करता है। उद्वेलन योग्य नाम प्रकृतियों और उच्च गोत्र के जघन्य अनुभाग संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से पल्योपम के असंख्यात वे भाग है। उद्वेलना करता है तो अंतर जघन्य से पल्योपम के असंख्यात विभाग, क्योंकि वो अंतर यानी वो उसने उद्वेलना, क्या कहते आप? उद्वेलना के अंत, स्वामित्व निकाल, स्वामित्व निकालो उसका। आपका प्रश्न स्वामी के बाबत है ना, उद्वेलना योग्य अनुभाग का संक्रामक कौन है वो निकालना। 382 प्रथम संयोजन करने वाला जघन्य अनुभाग का संयोजन, हाँ यानी उसने उद्वेलना की है और फिर बांधा है, फिर बांधा है जघन्य अनुभाग बांधा है और आवली के बाद उसका अनुभाग का जघन्य अनुभाग का संक्रामक होगा, वो जघन्य अनुभाग बढ़ेगा तो उसका संक्रामक कहने में आएगा। तो अभी तो उसका जघन्य में अंतर कब कहलाएगा, अभी उसने जघन्य का कर दिया, अब वो उसने बांधी है, फिर दोबारा बांधने के बाद जब कभी उसको उद्वेलना चालू करेगा। हाँ ये जघन्य से पल्लोपम की संख्या मिनिमम, क्योंकि अंतर्मूर्त में फिर उसने उद्वेलना चालू की, इसलिए उद्वेलना के लिए पल्ले की संख्या तो भाग लगा। फिर उद्वेलना के बाद वो जब भी फिर बांधेगा और फिर जघन्य संक्रामक होगा, जब बांधना चालू करेगा तो जघन्य बांधेगा और संक्रमण आवली के बाद उसको संक्रमण करेगा। हाँ क्योंकि उसके उद्वेलना करने के लिए उतना काल लगा ना, इसलिए उसको अंतर में लिया। उद्वेलना करता रहा तब तो जघन्य रूप से चलता रहा उसका, जघन्य का अंतर हो गया उसको, फिर जघन्य कब कहलाएगा, पूरी उद्वेलना होने के बाद बांधेगा और आवली के बाद, उसको संयोजक कहा था। अनंतानुबंधी के विसंयोजन में भी ऐसा ही लेना है। अपने को था ना जघन्य परिणाम से युक्त है ना, क्या अनंतानुबंधी की विसंयोजना की मिथ्या तो में आया, अनंतानुबंधी बांधा, परंतु वो जब वो अनंतानुबंधी को बांधते हुए मंद मिनिमम पॉसिबल परिणाम से जब बांधेगा और बांधने के बाद आवली बीत जाएगी तब वो जघन्य का संक्रामक कहलाएगा। नहीं हाँ, अनुभाग का संक्रामक चाहिए। जघन्य अनुभाग का संक्रामक कब होता है, विसंयोजना करने के पश्चात जब जघन्य परिणाम में आता है, ऐसा लिया ना हमने। जघन्य अनुभाग का संक्रामक है, मिनिमम पॉसिबल स्पर्धक है और उसका संक्रामक होता है, उसकी बात ली। यानी उसमें उत्कर्षण लेना, आप अपकर्षण की अपेक्षा ही बात सोच रहे अकेला। मिनिमम पॉसिबल बांधा, आवली बाद काल बीत गया, मिनिमम पॉसिबल अनुभाग बांधा, आवली काल बीत गया, वो जघन्य से उत्कर्षण होगा उसका। वो तो उदय में लिया था हमने, जघन्य अनुभाग का उदय लिया था, संक्रामक में तो विसंयोजन के बाद वाला लिया। अभी स्वामित्व निकाला, वहीं पर हमको प्रश्न था ना, ये जघन्य परिणाम का अर्थ क्या होता है, वो अभी ख्याल में आया क्या होता है। जघन्य का संक्रामक उसका स्वामित्व लेना है। 382 में पहले में है ना, जघन्य परिणाम से संयोग, पीछे क्या लिखा, विसंयोजना करके, करके ने करने के बाद विसंयोजना हो गई है, अभी सत्ता में कुछ नहीं है। जो जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय वर्तमान है, उसका अर्थ हमने नीचे देखा था कि वहां उसने जघन्य अनुभाग बांधा, आवली काल बीत गई और उसके बाद जब उसका संक्रमण होगा तब उसको कहेंगे। अब फिर आते हैं 388 पृष्ठ पर। ये पल्लोपम के असंख्यात विभाग तक हमने जघन्य की बात की थी है ना। उत्कर्ष से संयत योग्य प्रकृतियों को छोड़कर, अभी अंतर कह रहे हैं ना, तो संयत योग्य प्रकृतियों को छोड़कर शेष प्रकृतियों का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तथा संयत योग्य प्रकृतियों का उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है, क्योंकि संयतों में जो प्रकृतियां वहां संयतों में उद्वेलना किसकी होती है, वहां उद्वेलना को नहीं लेना है। संयतों में जो है ना, संयतों में उद्वेलना से नहीं होगी, वो तो क्षय से नष्ट हो जाएगा, है उद्वेलना योग्य, परंतु संयत योग्य जो प्रकृतियां हैं, नाम प्रकृतियां, उसकी बात यहां लेना। तीर्थंकर नाम कर्म के जघन्य अनुभाग संक्रामक का अंतरकाल नहीं है, इस प्रकार अंतरकाल की प्ररूपणा समाप्त हुई, उसमें फिर गैप नहीं पड़ता है ना, जघन्य संक्रामक। तीर्थंकर का कौन लिया था हमने स्वामित्व, तीर्थंकर की बात आई थी ना वहां पर, हाँ जगन, वो तो तीर्थंकर का हमने फुटनोट में पढ़ा था। देखो फिर फुटनोट लेना, 382 की फुटनोट, ये नरक द्वीप वगैरह पहले में पहले ये सभी उद्वेलना योग्य प्रकृति लिया, तीर्थंकर और अनंतानुबंधी, इन सबके लिए क्या है, जगन्य अनुभाग बंध कर एक आवली के बाद उसका जो संक्रमण होगा उसकी बात की थी वहां पर, और फिर उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, ये बात यहां बता रहे हैं, ये अंतर की प्ररूपना समाप्त होती है। 388 नाना जीवों की अपेक्षा क्या, प्रकृति संक्रमण और उद्वेलना के उदीर्ण, देखो यहाँ जो उद्वेल अभी जो हमने देखा ना, यहाँ तो हम अनुभाग संक्रमण देख रहे हैं, प्रकृति संक्रमण कहो उद्वेलना कहो एक ही बात है, उद्वेलना इज वन ऑफ प्रकृति संक्रमण, देखो देखो ये सम्यक प्रकृति की जो हमने क्या ना मिथ्य उद्वेलना, ये तो हम किसी विशिष्ट प्रकृतियों में ही उद्वेलना होती है, उद्वेलना भी एक संक्रमण है, उद्वेलना एक वन ऑफ द संक्रमण है, उसमें जो कुछ कोई विशिष्ट प्रकृतियां उल्टा उसका संक्रमण हम देखते हैं ना, जैसे देवगति है नरक गति है वो तो नष्ट हो जाती है, आहार बांधी है वो नष्ट हो जाती है, उच्च गोत्र है वो नष्ट हो जाता है, ये नष्ट होता है ना, अभी निज गोत्र रूप से हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हाँ उसको उद्वेलना, ये मुख्यतः तो मिथ्यात्व में जाने के बाद होती है, ये सब एक इंद्रियादि में जाने के बाद होती है, सम्यक 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 मोहिनी के मिथ्यात्व में जाने के बाद है, परंतु अनुभाग में तो उसको तो हम सम्यक दृष्टि है तो भी उसका अनुभाग में संक्रमण होता रहता है, प्रकृति संक्रमण में और उद्वेलना में अंतर नहीं है, उद्वेलना इज वन ऑफ द प्रकृति संक्रमण, तो प्रकृति संक्रमण तो अन्य में भी कहलाएगी, जैसे साता से असाता होना या असाता से साता होना, उसको उद्वेलना नहीं कहेंगे परंतु प्रकृति संक्रमण कहेंगे, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति होना उसको संक्रमण कहेंगे, उद्वेलना नहीं कहेंगे, ये नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय दो प्रकार का है, उत्कृष्ट पद भंग विषय और जघन्य पद भंग विषय, यानी उत्कृष्ट पद के बारे में कोई भंग होते हैं और जघन्य पद के बारे में, उनमें अर्थ पद कहते हैं, उसका लक्षण उसका नियम बताएंगे, जो उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक है वे अनुत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक है वे उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, क्योंकि एट ए टाइम या तो उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक कहलाएंगे या अनुत्कृष्ट के होंगे। कितने अंदर स्पर्धकों में से, कितने स्पर्धकों में से उत्कर्षण अपकर्षण जो हो रहा है उसको संक्रामक कहेंगे। इस अर्थपद के अनुसार सभी कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग के कदाचित सब जीव असंक्रामक होते हैं। कदाचित असंक्रामक बहुत और संक्रामक एक होता है, उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक बता रहे, तथा कदाचित असंक्रामक भी बहुत और संक्रामक भी बहुत होते हैं। हमने देखा ना उत्कृष्ट अनुभाग बांध कर फिर एक आवले के पश्चात कहीं पर भी जाता है तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग के संबंध में भी विपरीत क्रम से तीन भंग है, यानी वहां तो संक्रामक ज्यादा होगे ना, असंक्रामक कदाचित होगा। तो कदाचित सब जीव संक्रामक, कदाचित संक्रामक बहुत, असंक्रामक एक, तथा कदाचित संक्रामक भी बहुत और असंक्रामक भी बहुत होते हैं कहना चाहिए। सातावेदनीय यश कीर्ति और उच्च गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग के नियम से बहुत संक्रामक और बहुत असंक्रामक होते हैं। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के भी बहुत संक्रामक और बहुत असंक्रामक होते हैं। हाँ, एक ही भंग है। शेष कर्मों के छह भंग हैं। यानी पहले जैसे हमने असंक्रामक ज्यादा वगैरह होते हैं, संक्रामक ज्यादा है कम है उसकी अपेक्षा इसे दोनों ओर से लेना। अपूर्व करण गुण स्थान में परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाने पर जिन कर्मों का उत्कृष्ट बंध कहा गया है उनका वहां उत्कृष्ट करना वो अनुत्कृष्ट बंध होता है। क्या कहते हैं अभी परभवी कौन कौन से बन रहे, देवगति है, देवगत्यानुपूर्वी वगैरह जो है वहां पर वैकिरेक वगैरह कंगोपांग परभविक जो बन रही है तो उसका वहां शुभ प्रकृतियां है, उसका उत्कृष्ट बंध वहां होता है जहां बंध विच्छित हो रही है। तो वहां उत्कृष्ट भी बंध है और अनुत्कृष्ट भी बंध है। क्योंकि क्यों उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ऐसे दोनों क्यों, क्योंकि यहां अपूर्व करण की बात चल रही है। अनिवृत्ति करण में तो हम विशुद्धि के परिणाम समान बताएंगे, अपूर्व करण में क्या पोजीशन है क्योंकि वहां उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं, परिणामों की संख्या की बात है। वहां असंख्यात लोकमात्र अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों की संभावना है। परिणामों की अपेक्षा भी असंख्यात लोक है तो एक एक परिणाम में अनुभाग बंध अधिवसान स्थान असंख्यात लोक होते हैं। तो टोटल अनुभाग बंध करने वाले जो परिणाम है वो असंख्यात लोक मात्र इतने वेरिएशन है तो किसी को उत्कृष्ट किसी को अनुत्कृष्ट भी बंध होगा। हाँ, अलग अलग जीवों के, नाना जीवों की बात चल रही ना, हमने वहां विशुद्धि के परिणाम भी इतने देखे थे। इस कारण इनके छह भंग होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट पद भंग विषय समाप्त हुआ। अब जघन्य अनुभाग संक्रम के भी विषय में यही अर्थपद है। इस अर्थपद के अनुसार पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, चार संज्वलन, नौ नौकशाएं, तीन आयु, उद्वेल्यमान नाम प्रकृतियों, उच्च गोत्र और पांच अंतराय के जघन्य अनुभाग संक्रामकों के छह भंग होते हैं। जघन्य अनुभाग का संक्रमण जीव ज़्यादा है कम है इस तरह से। ज्ञानावरण आदि का जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन है? हाँ, बारहवें वाला है, परंतु वहाँ नाना जीवों की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से बात बताई ना। हाँ, यानी वो कितने हैं उसकी बात है ना। हाँ, दो है तो भी अनेक है कहेंगे। स्त्यानुवृद्धि आदि तीन, सातावेदनिया असातावेदनिया, मिथ्यात्व आठ कषाय, तिर्यक आयु, अनुद्वेल्यमान नाम प्रकृति और नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग के नियम से संक्रामक बहुत और असंक्रामक भी बहुत है। उनके संक्रामक हमने वो देखे थे, वो तो सूक्ष्म एकेंद्रियों में उसका समुद्घात, ये हत समुत्पत्ति हो जाते हैं और बाद में जघन्य अनुभाग का बंद करके संक्रामक होते हैं, इसलिए दोनों ही बहुत लिए। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्ररूपणा है, इस साता करना नाता हो गया। साता वेदनीय यश कीर्ति और उच्च गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा उनका सर्व काल है। शेष कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अप्रशस्त कर्मों का पल्ल्योपम के असंख्यात भाग मात्र है। लगातार यानी अनेक जीव लगातार करते रहे उसका ही काल है। किसमें? शेष कर्मों में। हाँ, उत्कृष्ट अनुभव संक्रामकों का काल जघन्य से अंतर्मुख और उत्कर्ष से अप्रशस्त का लिया अकेला पल्ले की संख्या थे भाग। आयु कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात भाग मात्र हैं। क्यों लेना? रुजुगति में क्या डिफरेंस पड़ेगा? उसी के ये उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? आयुओं का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक की बात करते हैं। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण नहीं निकालना, 382 के आसपास मिलेगा। देखो 383 पर नीचे वहां एक जीव की अपेक्षा काल देखा है, फिर हम नाना जीवों पर घटित करेंगे। आयु कर्म की नीचे का पैराग्राफ, आयु कर्मों की जिस स्थिति को बांधने वाला जिस अनुभाग की रचना करता है वह जब तक उस स्थिति का अपवर्तन नहीं करता तब तक उतने मात्र काल उसके वह अनुभाग होता है। तो संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त देवाय नारकायु का और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम है। और तिर्यंचा में असंख्यात पुद्गल वर्ती में एक जीव की अपेक्षा लिया था और नाना जीवों की अपेक्षा से एक मिनट उत्कृष्ट का स्वामी भी देख लेते हैं। हाँ, नारकायु की बात है वहां पर, शेष आयु कर्म। हाँ, दे नारकायु की बात पढ़ेंगे। 378 सेकंड पैराग्राफ, नारकायु के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम किसके होता है? जो उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर बंधावली को बिता चुका है, वह अंतिम समयवर्ती तद्भवस्थ होने में एक समय यदि कावली मात्र काल के शेष रहने तक नारकायु के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के योग्य होता है। यानी वो लास्ट एक आवली छोड़कर वहां तक वो नारकायु का, हाँ नारकायु के लिए रहेगा वो। फिर कहते हैं यहाँ हमने कितना लिखा, आयु कर्मों के उत्कृष्ट, यानी एक विशिष्ट आयु नहीं ली है, कोई ना कोई आयु बांधता है तो उसमें बंधावली के बाद उसका उत्कृष्ट अनुभाग बांध कर उसका अपकर्षण आदि होगा, संक्रामक होगा। अभी जिन परभविक नाम कर्मों के बंधाद्यवसान के अंतिम समय में क्षपक जीव उत्कृष्ट अनुभाग की रचना करता है, उन नाम कर्म प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। क्या कहते हैं? परभविक नाम कर्म का बद्ध अध्यवसान का अंतिम समय, परभविक ने हमने आठवें गुणस्थान में देखा भी, पूर्व करण में देवगति आदि बांधे उसने और उसके यथा योग्य जो विक्रेक शरीर है, समय चतुर संस्थान है, उस संबंधी बांधे ने उसने परभविक संबंधी, तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग उसने वहां बांधा। और फिर उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में वो क्षय करके वो तो पहुंच गया ऊपर, और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, पूर्व कोटि पृथक्त्व लिया उसने। ओ यस नाना जी वही मैं भूल गई, यानी अंतर्मूर्त इसलिए लिया कि एकाध जीव है वहां पर, वो अंतर्मूर्त में समाप्त करेगा, फिर अंतर पड़ेगा बीच में, काल लिया ना इसलिए। हाँ कोटि उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण लिया, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल लिया है, यानी तो तेरहवें गुणस्थान में तो हमेशा ही रहेंगे ना जी। हाँ उत्कृष्ट अनुभाग का बिना अभी कोई उत्कृष्ट नहीं बांधेगा, उसकी अपेक्षा लेना यहाँ पर। पूर्व कोटि पृथक्त्व तो लगातार उत्कृष्ट वाला होगा, तो वो अंतर में कुछ बताएंगे फिर तब पढ़ेंगे उसको। अक्षपक योग्य प्रशस्त नाम प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्यपम के असंख्यात भाग मात्र है। इस प्रकार उत्कृष्ट काल की प्ररूपना समाप्त तो हुई है। अरे अपना काल भी अप्रशस्त आगे बढ़ गया। रुकते यहाँ पर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन।